ओम शांति। हम सबके समक्ष आदरणीय शीलू दीदी उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों से हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय शीलू दीदी जी, आप वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका, राजयोग विशेषज्ञ कहें आपको। आप अपनी मधुर भाषा द्वारा, मधुर आवाज द्वारा हमें आवाज से परे ले जाने वाली विशेष आत्मा हैं। आप उपाध्यक्ष हैं एजुकेशन विंग के, शिक्षा प्रभाग के। आप 1960 में 12 वर्ष की अल्प आयु में ही संस्था के संपर्क में आए। 69 में आपने साइंस में बीएससी की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात 1970 में ही आपने संपूर्ण रूप से समर्पित होकर सेवाएं देना प्रारंभ किए। प्रारंभ में आप कुछ वर्षों तक मुंबई, बैंगलोर, काठमांडू, हैदराबाद आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 76 से आप मुख्यालय में स्थायी रूप से, विशेष रूप से राजयोग शिविरों का कुशल निर्देशन करते हुए लाखों आत्माओं को लाभान्वित किए, जिसमें अनेक शिक्षाविदों, न्यायविदों, राजनीतिज्ञों, चिकित्सकों, वैज्ञानिकों, व्यापारियों आदि अनेक गणमान्य आत्माओं ने आपके द्वारा प्रवचनों का लाभ लेकर जीवन का परिवर्तन किया। आपने पांचों ही महाद्वीपों में लगभग 75 से अधिक देशों में भ्रमण करके अनेक आत्माओं को लाभान्वित किया। शुरुआत में आपके द्वारा 93 में टीवी चैनल, जिसमें जी जागरण, सोनी चैनल में भी कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आपको 2023 में वुमेन ऑफ एक्सलेंसी अवार्ड से भी नवाजा गया है। ऐसे और भी अनेक विशेषताएं हैं, परंतु अभी हम आदरणीय दीदी जी से सुनेंगे। आपका विषय है प्यार में समाने की विधि। आदरणीय शील दीदी जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते हैं, हम बच्चे बाबा के बहुत लाडले प्यारे बच्चे हैं, सिकीलदे बच्चे हैं, और हर मुरली में बाबा हमें कितने टाइटल देते हैं। कोई ऐसी मुरली नहीं होगी जिसमें बाबा ने हमें कोई नया टाइटल न दिया हो। वो टाइटल्स का अगर हम लिस्ट निकालें तो बहुत लंबी लिस्ट निकल आएगी। लेकिन इससे क्या सिद्ध होता है कि बाबा का हम बच्चों से बहुत प्यार है। ये प्यार की निशानी है। परमात्म प्यार क्या होता है? परमात्मा हम आत्माओं को कैसे प्यार देते हैं, वो बाबा की मुरलियों से पता चलता है। अगर कहें कि हर मुरली एक भगवान का प्रेम पत्र है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बाबा हम बच्चों को कितनी ऊंची दृष्टि से देखते हैं, किस रूप में देखना चाहते हैं, वो सब मुरलियों से पता चलता है। लेकिन हम उसका रिटर्न कितना देते हैं, वो हम अपने आप से पूछें। उनका रिटर्न हम क्या देंगे? बाबा कहते हैं कि उतना ही प्यार बाबा को भी हम देते हैं। पूछे अपने आप से, भगवान तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम कितना प्यार करते हैं? और उस प्यार का सबूत क्या है? अगर हम कहते हैं कि हाँ, हमारा बाबा से बहुत प्यार है, तो उसका सबूत क्या है? सबूत भी तो चाहिए ना। बाबा हमसे और कुछ नहीं मांगते, बस हमें यही कहते हैं, बच्चे मेरे प्यार में समाए रहो, जो मैं तुम्हें प्यार देता हूं उस प्यार में समाए रहो। अब कैसे हम समाए, ये अभी आज का विषय है। परमात्म प्यार में समाए रहने की विधि, समाए रहने के लिए क्या जरूरी है? समान बनना, ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता है अगर हम प्यार में समाना समाए रहना चाहते हैं तो। जिस प्रकार हम स्थूल रूप में देखते हैं कि अगर हमारे पास पानी है और हम उसमें तेल डालते हैं तो वो तेल पानी में समाएगा नहीं, उसकी स्पेसिफिक डेंसिटी अलग है, पानी की अलग है, तो वो ऊपर से ही तैरेगा। लेकिन अगर हम पानी डालेंगे तो वो पानी समा जाएगा। अर्थात अगर समाना है तो उन जैसा बनना पड़ेगा। उन जैसा अगर हम नहीं बनते तो हम समा नहीं सकते। भले हम भगवान को कितना भी याद करते हैं, भक्ति मार्ग में भी बहुत याद करते हैं, नवधा भक्ति करने वाले तो कितना याद करते हैं, परंतु याद भी कितने प्रकार की होती है, पता है ना? जब हम याद कहते हैं तो कितने प्रकार की याद होती है। एक याद होती है जो स्वार्थ की होती है, किसी व्यक्ति को हम याद करते हैं। क्यों उसको याद करते हैं? क्योंकि उससे कुछ मिलेगा, कुछ प्राप्ति होगी, है ना? कई बार ऐसे होता है, हम किसी व्यक्ति को याद कर रहे हैं और अचानक वो व्यक्ति पहुंच जाता है। जब पहुंच जाता है तो हमारे मुख से अनायास निकलता है, अरे कितना आपको मैं याद कर रहा था, मैं आपको कितना याद कर रहा था। तो जब ये वाक्य सुनता है वो व्यक्ति, तो उसका रिएक्शन क्या होता है? अच्छा, मुझे याद कर रहे थे? क्यों याद कर रहे थे? क्या काम था? माना अगर कोई काम है तो हम याद करते हैं, ऐसे क्यों याद करेंगे? कितनों को याद करेंगे? जरूर उनको याद करेंगे जिनसे हमारा काम है। अब उस याद को कौन सी याद कहेंगे? स्वार्थ की याद, क्योंकि हमको उनसे कुछ चाहिए तो अब कहेंगे उस व्यक्ति से ही हमें वो चीज मिल सकेगी, इसीलिए हम उसको याद करते हैं। तो वो याद तो स्वार्थ की याद होती है ना। तो स्वार्थ की याद जहां होगी वहां करते हैं। भगवान को भी स्वार्थ से कितना याद करते हैं? एक स्टूडेंट होगा, उसको एग्जाम देना होगा तो जरूर मंदिर में जाएगा और कहेगा भगवान मुझे पास कर देना, ये स्वार्थ की याद हुई, नहीं तो मंदिर कभी नहीं जाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन, परीक्षा का दिन है और परीक्षा हॉल में जाना है, एक परीक्षा देनी है, तो पहले मंदिर में जाएगा, भगवान मुझे पास कर देना। तो कोई भी चीज का स्वार्थ होता है तो हम भगवान को याद करते हैं, है ना? कुछ भी चीज चाहिए हम समझते हम भगवान से मांगेंगे तो भगवान हमें देगा। तो एक है स्वार्थ की याद, जिसको हम कहते हम याद करते हैं। दूसरी है याद आती है, आती है याद, रह रह करके कईयों की याद आ जाती है अपने आप। हम कोई करते नहीं है, करने में तो थोड़ी मेहनत लगती है, आने में मेहनत नहीं है, अपने आप याद आती है। तो अपने आप याद आती है, भाई क्यों याद आती है? क्योंकि उसे स्नेह है। किसी व्यक्ति से स्नेह होता है, प्यार होता है, तो उस व्यक्ति की याद आती है। लेकिन एक तीसरी प्रकार की भी याद है, और वो याद है जो याद सताती है। सताती कब है? जब हम उसको भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते हैं, उसकी याद सताती रहेगी। लौकिक में कोई संबंधी होगा जो बहुत प्रिय था, बहुत नजदीकी संबंध था, अब उसने शरीर छोड़ा तो हम उसको भूल ही नहीं सकते हैं, याद सताती रहेगी। उसकी चीजों को देखेंगे तो उसकी याद सताएगी, उनकी बातों को याद करेंगे तो याद सताएगी, तो भूल ही नहीं पाते हैं। तो हम कहते हैं ये याद सताने वाली जो होती है ना, वो कई संबंध है, इसीलिए याद आती है, नहीं तो क्यों सताएगी याद? कोई ऐसा संबंध है, बेटा है, पति है, पत्नी है ना, कोई बहुत नजदीक, और वो संसार से चला गया तो उसकी याद सताती है, भूलने पर भी नहीं भूलती। लेकिन बाबा की याद कैसे होनी चाहिए? केवल याद हम करते हैं ये तो स्वार्थ की याद हो गई। कई बच्चे भी बाबा को स्वार्थवश याद करते हैं, बाबा मेरा ये काम कर देना, हाँ बाबा ये काम कर देना, फिर उस स्वार्थ में एक सौदा भी करना चाहते हैं। भक्ति मार्ग में जब स्वार्थ की याद होती है तो उसमें सौदा भी करते हैं, भगवान तुम मेरा ये काम कर दोगे ना तो मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा। बाबा के बच्चे भी ऐसे करते हैं, हाँ मुझे बाबा को भोग लगाना है, क्यों? हाँ क्योंकि मेरा ये काम रुक गया है तो बाबा को भोग लगाऊंगा, भोग लगाऊंगी तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये भी तो स्वार्थ की याद है, काम हो जाएगा इसीलिए बाबा को भोग लगाते हैं। और कोई फिर ऐसे ही भोग लगाते हैं, हाँ बाबा से प्यार है तो बाबा के भोग के लिए देते हैं कि बाबा को भोग लगाना है। तो ये तीन प्रकार की जो यादें हैं वास्तव में वो कोई बहुत ऊंची यादें नहीं है। लेकिन एक चौथी याद है जिसको हम कहते हैं समाने वाली याद, आने वाली, करने वाली, सताने वाली नहीं। क्योंकि ये जो तीन प्रकार की यादें ये दुख भी दे सकती है, दुख भी दे सकती है। स्वार्थ की याद हमने चलो की कि कोई काम मेरा हो जाए, और वो काम नहीं हुआ तो हम कहेंगे अरे उसको कितना याद किया, उसने काम ही नहीं किया मेरा, कितना मैंने उसको कहा पर वो उसने किया ही नहीं। तो उस याद में कोई सुख नहीं है, वो दुख है। आने वाली याद भी चलो कोई स्नेह के कारण है, वो स्नेह भी तब उत्पन्न होता है जब उसका कोई गुण देखते हैं, कोई विशेषता देखते हैं, तो उनसे थोड़ा स्नेह हो जाता है। एक बच्चे से भी स्नेह होता है, बच्चा बहुत प्यार से मुस्कुराता है, बड़ा प्यारा लगता है तो कितना स्नेह हो जाता है उस बच्चे से। तो कोई विशेषता है, कोई गुण है तो हम हाँ उसकी याद आती है। लेकिन आज एक विशेषता देखी तो चलो स्नेह हुआ, कल उसमें एक अवगुण देख लिया तो फिर क्या होता है, घृणा भी आ सकती है। अरे ये व्यक्ति तो ऐसा है, बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करता है लेकिन उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। और जैसे ये सोचा तो उससे वो जो स्नेह की याद है वो खत्म हो जाएगी, और सताने वाली याद तो है ही दुखदाई, संबंध वाली याद तो है ही दुखदाई, क्योंकि हम भूलना चाहते हैं पर वो इतना मन को खींचती है जो हम नहीं भूल पाते हैं। तो बाबा ने कहा ये तीनों ही प्रकार की यादें अंत में दुखी देगी, लेकिन समाने वाली याद ये कितनी ऊंची याद है। किसी ने एक बात बहुत सुंदर कही कि देखो किसके पास एक छोटा सा लोटा हो, अब वो लोटे में थोड़े छेद हैं और उस लोटे को आप पानी में डालो और पानी भरो तो क्या होगा, वो छेद से पानी निकल जाएगा, वो लोटा कभी भी भरेगा नहीं, कभी नहीं भरेगा क्योंकि छेद से निकल जाएगा। तो अगर वो लोटा सदा भरा रहे तो उसकी विधि क्या है, उसकी विधि क्या है, उसकी विधि है उस लोटे को पानी में डाल देना, वो समा जाए, उसी में ही पड़ा रहे। अब उसी में ही पड़ा रहेगा तो पानी कैसे निकलेगा, भले छेद है तो भी पानी निकलेगा नहीं क्योंकि उसी में ही पड़ा है, बाल्टी में ही पड़ा है तो उसी उसमें भरा ही रहेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं समाने वाली याद, समाने वाली याद में कोई स्वार्थ नहीं होता है, समाने वाली याद में कुछ भी मांगना नहीं होता है, समाने वाली याद में कोई सौदा नहीं करते हैं, समाने वाली याद कोई मन को दुख नहीं देती है, क्योंकि जिसमें समाते हैं उसका गुण अपने आप मिल जाता है क्योंकि समा गए उसमें, लेकिन उसके लिए समान बनना पड़ेगा। जब तक समान नहीं बने हैं तब तक समा नहीं सकते हैं। इसीलिए बाबा हम बच्चों को बार बार अभी यही चेतावनी देते हैं, बच्चे घर चलना है, घर चलना है। तो आप कैसे घर चलोगे, क्योंकि सजनी बनकर चलेंगे तो साथ साथ चलेंगे, बराती बनकर चलेंगे तो पीछे पीछे से आएंगे। तो सजनी बनकर के साथ में चलना है या बराती बनकर के पीछे पीछे आना है, तो बच्चे क्या जवाब देते, बाबा साथी बन के चलना है, सजनी बन के चलना है। तो सजनी बनने के लिए तो फिर साजन जैसा बनना पड़ेगा, होता है ना कई बार पति इतना लंबा और पत्नी इतनी ठिंगनी, ऐसे होता है ना, तो वो जोड़ा अच्छा नहीं लगता है, पति इतना काला और पत्नी इतनी गोरी मान लो तो वो भी जोड़ा अच्छा नहीं लगता है, दोनों एक जैसे हो। तो भगवान इतना ऊंचे से ऊंचा सर्वोत्तम सर्व आत्माओं का पिता, सर्व गुणों का सागर, और बच्चे कैसे पतित, दुखी, अशांत, विकारी, भक्ति मार्ग में तो ऐसा ही थे ना हम। भगवान को यही कहते थे, भगवान तू तो कितना ऊंचा हो, ऊंचे से ऊंचा भगवान, और मैं कितना नीच। तो वो इतना ऊंचा और मैं इतना नीच, तो मिलन भी नहीं होगा, बिल्कुल मिलन नहीं होगा। भगवान तू तो निराकार और मैं तो ये साकार, तो भी मिलन नहीं होगा। कैसे मिलन होगा, निराकार और साकार मिलेंगे कैसे? या तो पहले वो निराकार साकार बने, या फिर साकार निराकार बने, दोनों एक जैसे हो तब तो मिलन होगा। तो वो मिलन क्यों नहीं हुआ, क्यों बाबा कहते हैं कि वो भक्ति मार्ग में तो केवल कर्म कांड ही है, बस वो मिलन का अनुभव नहीं है, क्योंकि बहुत अंतर है। इसीलिए कई कह देते आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। समाधि जब कहते हैं, योग करते हैं, तो वो लास्ट की स्टेज बताते हैं समाधि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रतिहार ध्यान धारणा फिर समाधि। समाधि माना उसमें समा गया, पर वो समाधि की अवस्था तब होगी जब ये इतने सारे हम पास करेंगे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा फिर समाधि। तो बाबा भी हमें क्या कहते हैं, समाधि का मतलब हो गया कि समान हो गए, सम माना समान, समान हो गए, समा गए। तो समाने के लिए समान बनना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि कुछ भी मांगो मत, बाबा इतना भरपूर कर देता है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। कई कहते हैं हम कोई भी चीज तो भगवान से मांगते नहीं है, लेकिन गुण तो मांगते हैं ना, भगवान मुझे शांति दो, शक्ति दो, दया करो, कृपा करो, रहम करो, ये कोई चीज नहीं है लेकिन ये गुण है। तो बाबा कहते ये गुण भी नहीं मांगो, देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के देता है। सूरज से तो मांगते थोड़ी हो, हे सूरज मुझे अपनी रोशनी दो, वो तो दे ही रहा है, सूरज का तो काम ही ये रोशनी देना। सागर के किनारे जाते हैं, सागर को ये थोड़ी कहते हैं हे सागर मुझे अपनी शीतल हवा दो, वो तो दे ही रहा है, मांगना नहीं पड़ता है, वो तो दे रहा है। परंतु हमको क्या करना पड़ता है, हमको उनके पास जाना पड़ता है। सूरज की रोशनी चाहिए और हमने सब दरवाजे बंद करके रखे हैं, तो सूरज की रोशनी कैसे आएगी अंदर, दरवाजे खोलने पड़ेंगे।
शिव पिता को अब याद करो, ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता आया है, चुराल विनाश खड़ा आगे। शिव पिता को अब याद करो, पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। सतयुग में तुमको आना है, शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है,
तो जब कलयुग के अंत में भगवान इस सृष्टि पर आते हैं और देखते हैं बच्चे मेरे ऐसे पतित बन गए हैं, तो भगवान को साकार माध्यम लेना पड़ता है, क्योंकि बच्चे तो साकार में हैं। इसीलिए बाबा कई बार कहते प्रेरणा से नहीं होगा, मुझे आपके समान बनना पड़ेगा और मुझे अपना शरीर तो है नहीं, इसीलिए शरीर को लोन पर लेना पड़ेगा, इसलिए मैं ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को समझाते हैं। और क्या समझाते हैं, जो भी समझाते हैं वो मेरे जैसा बनने के लिए समझाते हैं, परंतु पहले हम मेरे जैसा बनते हैं, हाँ हमारे जैसा बनते हैं, साकार में आते हैं, और फिर साकार में हमें क्या कहते हैं, अब बच्चे मेरे जैसा बनो, मेरे पास आना है तुम्हें, तो मेरे पास आना है तो मेरे जैसा बनो। अब बच्चे तो पूरे देह अभिमान में है, 63 जन्म का देह अभिमान है, या कहेंगे 84 जन्मों से तो हम शरीर में ही रहे हैं, तो कितना देह अभिमान हो गया है। तो इसीलिए बाबा को उसके पहला कदम क्या बताना पड़ता है, बच्चे देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। हर मुरली में बाबा जरूर कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्मा अभिमानी बनो, और मुझे याद करो, क्योंकि जब तक आत्मा अभिमानी नहीं बने हैं तब तक परमात्मा की याद रह ही नहीं सकती है। देह अभिमान में परमात्मा की याद नहीं रह सकती है, इसलिए जैसा मैं हूं वैसे पहले अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी बनो, ये पहला कदम है, ऐसे ही नहीं समाएंगे। फिर दूसरा कदम बाबा क्या कहते हैं, बच्चे विदेही बनो, विदेही बनो। विदेही बनो का मतलब क्या है, देही अभिमानी और विदेही में क्या अंतर है। विदेही बनो माना जो बाबा की आजकल की जो अभिव्यक्ति इशारे भी चले, एक सेकंड में शरीर से न्यारे हो जाओ, फिर वापस शरीर में आओ और कर्म करो, फिर शरीर से न्यारे हो जाओ, बीच बीच में शरीर से न्यारे हो जाओ, फिर कर्म करो, फिर शरीर से न्यारे हो जाओ। और उसका बहुत सुंदर उदाहरण बाबा क्या देते हैं, जैसे कछुआ, कछुआ चलता है, फिर उसको नहीं चलना है तो अंग समेट लेता है, अंग निकाले फिर समेट लिया। तो ये प्रैक्टिस भी बच्चों को होनी चाहिए। आत्माभिमानी की स्थिति माना, हर कर्म आत्मा की स्थिति में करना। मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा करा रही हूँ, आत्मा शरीर के द्वारा हर कर्म मैं करा रही हूँ, देख रही हूँ, सुन रही हूँ, बोल रही हूँ। मैं आत्मा करावनहार, ये इंद्रियां करनहार, इनसे मैं मालिक बन के करा रही हूँ। आत्मा अभिमानी स्थिति है। लेकिन फिर इससे आगे जाते हैं तो आत्माभिमानी स्थिति को कायम रखने के लिए कर्म में आए, फिर कर्म से न्यारे हो गए, कर्म में आए फिर कर्म से न्यारे हो गए। ये एक्सरसाइज बाबा सिखाते हैं। वो है विदेही अवस्था, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, विदेही स्थिति, जिस विदेह स्थिति भी कह सकते हैं, जैसे राजा जनक की बताते हैं। वो महलों में रहता था लेकिन महलों का मोह नहीं था। वो मोह तब हटेगा जब देही अभिमानी होकर फिर कर्म में आए और फिर कर्म से न्यारे हुए, ये अभ्यास होगा, तब हम निर्मोही बन सकेंगे, नष्टो मोहा बन सकेंगे। क्योंकि ये सब है और मेरा कुछ भी नहीं है, है और नहीं है, ये है विदेही अवस्था। तो कर भी रहे हैं फिर एक सेकंड में न्यारे भी हो गए, मेरा कुछ नहीं। फिर इनसे और आगे स्थिति बाबा बताते, अशरीरी बन जाओ, अशरीरी बन जाओ। ये शरीर है ही नहीं, हड्डी मांस का भी शरीर नहीं है। इतने हल्के बन जाओ, हमें बस बिंदु आत्मा यहाँ भ्रकुटी में विराजमान चमकता हुआ सितारा। इस शरीर के बांध से भी परे अशरीरी, बस एक बिंदु अपने आप को समझो। और बिंदु समझकर बिंदु को याद करो, ये अशरीरी अवस्था में ही हो सकता है। तो इसलिए ये प्रैक्टिस हमारी लगातार चलती रहे तब ये अशरीरी अवस्था आएगी, एक सेकंड में नहीं आएगी। उसके लिए पहले विदेही बनना पड़ेगा, विदेही बनने से पहले देही अभिमानी बनना पड़ेगा। इसलिए पहला अभ्यास है देही अभिमानी बनो, देखो सुनो बोलो सब करो, लेकिन मैं आत्मा कर रही हूँ इन इंद्रियों के द्वारा। फिर दूसरी अवस्था हो गई कि अंदर जाओ फिर कर्म में आओ, फिर भीतर जाओ फिर कर्म में आओ। और अशरीरी अवस्था हो गई एकदम बिंदु, और बिंदु में और कुछ नहीं, साकार की याद से परे। और वही बिंदु स्थिति शिव बाबा में लीन कर सकेगी क्योंकि समान बन गए। तो जहां समान बने वहां समाधि हो गई। और इसी स्थिति को भक्तों ने कह दिया आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। और बाबा कहते ये विलीन अवस्था, ये कोई स्थूल रूप नहीं है, कोई स्थूल रूप में हम विलीन नहीं होते हैं। स्थूल रूप में कोई चीज ऐसे मिलती नहीं है, वो तो पानी पानी में मिल गया, बूंद सागर में समा गई तो बूंद का अस्तित्व खत्म हो गया, वो सब सागर सम हो गए। लेकिन यहाँ हम ऐसे मिलते नहीं हैं, क्योंकि आत्मा भी अनादि अविनाशी, परमात्मा भी अनादि अविनाशी। अगर विलीन इस प्रकार से हो गई, उसमें समा गई, तो उसका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता है, इसमें लीन होने का तो प्रश्न ही नहीं है। लेकिन हाँ, बाबा की याद में हम लीन हो जाते हो सकते हैं, इसीलिए कहा, हाँ इंग्लिश में भी कहते हैं लॉस्ट इन लव, हिंदी में कहेंगे प्रेम में खो गया, प्रेम में खो गया। जब किसी के प्रेम में होते तो जैसे उसकी याद में खो जाते हैं, तो खो जाना माना जैसे समा जाना, उनके समान बन जाना, विलीन हो जाना। परंतु उसमें इतनी समानता चाहिए, बिना समानता के विलीनता की अवस्था कभी नहीं आएगी, या आप प्रेम में खोने की अवस्था भी कभी नहीं आएगी। अब तक तो केवल मांगते ही रहे, वस्तु तो मांगते ही रहे, चलो हमने कहा नहीं बाबा वस्तु नहीं मांगेंगे, तो जो बाबा ने दिया उसका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं। फिर बाबा कई बार कहते हैं बच्चे धन्यवाद भी काहे का, एक पिता का तो फर्ज है बच्चे को हक देना, वर्षा देना, वो अपन जो हक है वो बच्चा लेता है, धन्यवाद की बात क्या है, है ना। बाबा कई बार यहाँ तक ले जाते हैं, बच्चे ये तो मेरा फर्ज है, मुझे बच्चों को सुखी करना है, हर पिता का ये फर्ज होता है अपने बच्चों को सुखी करे, दुखी करने का कभी संकल्प नहीं आता पिता को। तो भगवान कहते हैं मैं तो ये फर्ज निभाता हूँ, जो तुमको मैं सतयुग का वर्षा देता हूँ, स्वर्ग का अधिकारी बनाता हूँ, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। फिर बाबा से हम गुण मांगते हैं, बाबा कहते हैं गुण भी मांगने की जरूरत नहीं है, गुण तो हमें लेना है, गुण लेना है, गुण मांगना नहीं है। जैसे सूरज से आप लाइट या शक्ति मांगते नहीं हो, बस लेते हो, सागर से आप ठंडी हवा मांगते नहीं हो, लेते हो। इसलिए अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वैल्यूज कैनॉट बी टॉट, खाली पढ़ाए नहीं जाते हैं, मूल्य शिक्षा में खाली मूल्यों को पढ़ाना नहीं होता है, वो तो जीवन में धारण करने की बातें है ना। तो जो टीचर में होगा वही स्टूडेंट्स देख करके सीखेंगे, खाली पढ़ाने से नहीं सीखेंगे, पढ़ाने से नहीं सीखेंगे। दिखाते ना महाभारत में द्रोणाचार्य ने पांचों ही पांडवों को वो शिक्षा देता था, तो शिक्षा में उसने ये सिखाया क्रोध नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, और कल ये पाठ पक्का करके आना। तो अगले दिन पाठ पक्का करके आए, क्रोध नहीं करना है। तो चार ने तो पाठ पक्का करके कह दिया क्रोध नहीं करना है, पर युधिष्ठिर ने कहा कि अब मैंने अभी पाठ पक्का नहीं किया है, पाठ पक्का नहीं किया, रोज यही कहे मैंने अभी तक पाठ पक्का नहीं किया है। तो द्रोणाचार्य उनसे पूछते क्या बड़ी बात है, यही कहना ना क्रोध नहीं करना है, लेकिन पाठ पक्का नहीं किया, यही कहते कहना कहता रहा। तो एक दिन द्रोणाचार्य को गुस्सा आ गया, तुमने ये छोटा सा पाठ भी पक्का नहीं किया, इतना भी पाठ पक्का नहीं किया, गुस्से से कहा। तो कहा अभी पाठ पक्का होगा, क्योंकि मुझे गुस्सा नहीं आया मुझे गुस्सा नहीं आया माना पाठ पक्का हुआ, लेकिन वो द्रोणाचार्य का पाठ पक्का नहीं हुआ वो कच्चा ही रह गया दूसरों को सिखाते सिखाते। इसलिए बाबा पंडित का मिसाल देते हैं ना, वो खुद नहीं कर सका, उनके जो जिज्ञासु थे वो तो कर लिया, क्योंकि वो उनकी भावना थी, खुद तो तर्क वितर्क में चला गया। इसलिए कहते वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट बट दे आर कॉट। जो हम करते हैं हमको देख दूसरे करते हैं, है ना। मेरे अंदर शांति है, आप मुझे कहो बहन जी आप में तो कितनी शांति है, कितना धीरज है, मुझे भी थोड़ा दे दो ना। अब मैं कैसे दूं आपको शांति, कैसे दूं धीरज, कैसे दूं भाई? शांति है धीरज है कैसे पता चलता है? धीरे से बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं, मुस्कुराकर बोलते हैं, तो ये धीरज भी है और शांति भी है। अब आपको ये धीरज और शांति मेरे से लेनी है, तो मैं चीज थोड़ी है जो मैं आपको दूंगी। आप कहेंगे देखो ये कितना शांति से बोलती है, ये कितना धीरज से बोलती है, मुझे भी ऐसे करना है, मुझे भी ऐसे करना है, तो सचमुच वो आ जाएगा ना। पर मैं सिखाऊंगी क्या आपको? मैं तो कर रही हूं, आप खुद समझ कर करो। तो इसलिए ये मूल्य सिखाए नहीं जाते हैं, ये धारण किए जाते हैं। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं ये मांगने की चीज नहीं है। शिव बाबा हमें शांति दो, शिव बाबा हमें शक्ति दो, शिव बाबा हमें दया करो। आज भी बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं बाबा आप कृपा करो, बाबा कहते कृपा क्या करूं? तो पुरुषार्थ करो, कृपा क्या मांगते हो? बाबा आशीर्वाद दो, बाबा कहते खुद अपने पर आशीर्वाद करो। आशीर्वाद करे हाथ रख दिया सिर पर तो हो गई क्या आशीर्वाद? कर्म तो ऐसे है नहीं, कर्म भी तो आपके ऐसे हो तब तो अपने आप आशीर्वाद मिलेगी, दुआएं अपने आप मिलेगी, दुआएं मांगनी नहीं होती है। दुआ करो ये मांगना थोड़ी होता है, आप श्रेष्ठ कर्म करो दुआएं अपने आप मिलेगी, मांगने की बात ही नहीं है। तो भक्ति मार्ग में हम सब कुछ मांगते ही थे, मांगते ही थे। अब ज्ञान मार्ग में बाबा कहते हैं मांगो नहीं। भक्ति मार्ग में समझते थे कि हम केवल पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, हवन करते हैं, तीर्थ करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, हम बहुत आस्तिक है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, परमात्मा कौन है ये पता ही नहीं है, मैं कौन हूँ ये पता ही नहीं है, तो आस्तिक थोड़ी हुए नास्तिक हुए। नास्तिक को तो पता ही नहीं, दुनिया वाले हमें कहते हैं आप लोग नास्तिक हो, ये सब नहीं करते हो। हम कहते हैं हम तो, आप नास्तिक हो, आप जानते ही नहीं हो परमात्मा कौन है, है ना। भगवान ने तो हमें आस्तिक बना दिया, हम खुद को पहचानते हैं, परमात्मा को पहचानते हैं। कई कहते ना भाई परमात्मा को हम आप जानते हो, पूछते हैं, हम कहते हैं हाँ जानते हैं, हम जानते भी हैं, मानते तो है ही हैं, मानते भी हैं, जानते भी हैं, और उन जैसा बनते भी हैं। खाली मानते और जानने की बात नहीं है, हम उन जैसा बनते भी हैं। अब कैसे बनते हैं वो फिर बाबा विधि बताते हैं कि मेरी याद में खो जाओ, इसीलिए मांगो नहीं। शिव बाबा मुझे शांति दो, शक्ति दो, लेकिन अपनी विधि को बदलना है। कैसे? शिव बाबा आप शांति के सागर हो, पहचानो उनको, सागर है वो, बेहद है, और मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूं, मैं हूं ना, वो तो मेरा स्वभाव है, मेरा ही स्वभाव है। शांति कोई ढूंढनी थोड़ी है, जंगल में थोड़ी जाना है शांति के लिए, वो तो मेरे पास ही है, मैं आत्मा ही उसका स्वरूप हूं, ये मेरी अपनी निजी शक्ति है शांति, जो हमें मांगनी नहीं है, परंतु बाबा के सानिध्य में अनुभव करनी है। तो सानिध्य में अनुभव कैसे करेंगे जब अधिकार से उसको हम ग्रहण करेंगे, तभी तो सानिध्य में वो लेंगे ना। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे शिव बाबा आप तो शांति के सागर हो, मुझे शांति बाबा दो, मुझे शांति दो। आप शांति के सागर हो, बैठो शांति के सागर के सामने, और बाबा आप शांति के सागर हो, मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूँ, और खो जाओ उस शांति में। इसी को ही तो कहते हैं समा जाना, उस शांति के सागर में खो जाओ और एकदम मन इतना शांत हो जाए। तो प्रेम भी एक गुण है, तो प्रेम के सागर में खो जाओ। कैसे खोते हैं प्रेम में? भक्ति मार्ग में भी भगवान के प्रति प्रेम दिखाते हैं, महिमा करते हैं ना, ये महिमा करना या स्तुति करना या कीर्तन करना, ये कीर्तन भी क्या होता है, कीर्ति है, कीर्ति माना उनकी स्तुति, उनकी विशेषताएं गाना की कीर्ति गाना, तो वही तो कीर्तन होता है। तो जो कीर्ति कर हम गाते हैं, वो गाते 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 फिर मांग लेते हैं कीर्ति, भगवान आप ये हो वो हो वो हो, अब मुझे भी थोड़ा दे दो, आप करुणा सिंधु हो, रहम दिल हो, ये हो ये हो, मुझ पर भी रहम करो। अब ये क्या हुआ, ये मांग लिया। तो बाबा कहते ये मांगने की चीज नहीं है, वो है तो मैं आत्मा उसकी संतान हूं, अधिकारी हूं, ये उसका फर्ज है देना, ये रहम ही है। इतना ज्ञान बाबा देते हैं, ये उसका उनका रहम है हमारे ऊपर, तो ये फर्ज अदाई निभा रहे हैं। बच्चे मांगते क्यों, भिखारी मांगता है, अधिकारी नहीं मांगता है, है ना। कई बार हम देखते हैं ना, सर्वेंट होगा वो साहब से कहेगा, साहब मुझे थोड़ा 10 रुपया चाहिए, आप 10 रुपया हमको दीजिए ना, तो ऐसे हाथ फैलाएगा, लेकिन बेटा हाथ थोड़ी फैलाएगा, वो जेब से 10 रुपया निकाल के कहेगा डैडी मैं 10 रुपया लेता हूँ, अधिकार रखेगा। और पिता भी कहेगा हाँ बेटा ले जाओ, और भिखारी ऐसे निकालेगा तो, सर्वेंट निकालेगा तो कहेंगे चोरी कर रहा है। हाँ बताएगा पिता को बेटा कि डैडी मैं ले रहा हूँ, अब डैडी भी यही कहेगा ना, बच्चों के लिए ही तो है सब कुछ। तो हम आज तक भिखारी की तरह थे, इसीलिए भिखारी की तरह भीख मांगते 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 जो था उससे भी वंचित हो गए, क्योंकि दूर चले गए, देह अभिमान में आ गए। अब बाबा कहते हैं मेरे नजदीक आने के लिए मेरे जैसा बनना है। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, यही तो किया। ब्रह्मा बाबा ने एक बीज डाला, शिव बाबा ने इनको कहा कि ये सब जो कुछ तुम्हारा है ये सब माताओं के नाम पर विल कर दो। बस तो 8 बहनों के नाम पर सब कुछ विल कर दिया। अब बाबा हम बच्चों को ऐसे नहीं कहते, हम बच्चों को बाबा कहते नहीं, घर गृहस्थ में भी रहना है, बच्चों को भी संभालना है। ब्रह्मा बाबा की बात तो अलग ही थी, क्योंकि भगवान को उनसे ये कार्य शुरू कराना था, तो पहला बीज तो उनका पड़ा। और फिर हम सब बच्चे सहयोगी बन गए। फिर दादी जी भी कहती थी नहीं हिस्सा निकालो, अपने लौकिक को भी खुश करो, अपने लिए भी रखो, ये धंधे में भी लगाओ, सेविंग भी करो, ये अपने अपना बजट खुद तैयार करो, ऐसे भी नहीं कि सब देख के जेब खाली कर लो, ये भी नहीं, अपने लिए भी रखना होता है, समझदारी तो उसमें भी है। लेकिन बाबा का भी हिस्सा है, ये नहीं भूलो, क्योंकि बाबा ने इतना दिया है हमें। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को ये सिखाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा की बात अलग थी, लेकिन बाबा फिर क्या कहते हैं, बच्चे ट्रस्टी होके रहो, ट्रस्टी होके रहो, जो आपका भी है उसके भी ट्रस्टी बनो, ये भी बाबा का ही समझ कर चलो। और जो भी तुम्हारा बोझ है सब मुझे दे दो, हल्के हो जाओ, क्योंकि बाबा के बने बाबा जिम्मेदार है। बोझ उठाओ मत, बस मुझे याद करो। कई भक्तों की कहानियां सुनाते हैं, वो भक्त इतने उसमें विलीन थे, पत्नी कहे कि खाने को नहीं है, कौन कहाँ से पैसा आएगा, और वो भक्त तो अपने ही पूजा में ही विलीन है। पर अचानक कोई ना कोई आ जाते थे, उनको दे देते थे, तो भूखे तो नहीं रहे ना, भगवान किसी न किसी द्वारा दिलाता ही है, जरूर दिलाता है। इसीलिए अगर सचमुच वो बाबा से प्यार है, तो बाबा किसी न किसी के द्वारा जरूर दिलाता है, ये हो ही नहीं सकता कि न हो। उनको ज्यादा चिंता है हमारे से भी, क्योंकि हम उनके हो गए। लेकिन सब छोड़ छाड़ करके बैठना नहीं है, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, हिम्मत भी बाबा आप ही दो, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, मदद तो करो ही, लेकिन मदद के लिए बंधा हुआ है, पर पहले हिम्मत हमारी है। तो समाने की विधि क्या है, बाबा की इतनी स्तुति गाते हैं, गाते 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 उस स्तुति में खो जाओ, खो जाओ, वो प्रेम में खो जाओ, जिससे प्रेम होता है उसमें खो जाते हैं। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कैसे प्रेम में खोना सिखाते हैं, पहले बाबा कहते हैं जो मैं ज्ञान देता हूं उसका मनन करो, क्योंकि अब तक जो मन में बातें थी वो भूसा भरा हुआ था, दुनियावी बातें भरी हुई थी, अब ज्ञान को भरो इस मन के अंदर। पहले मनन करो, बाबा की जो मुरलियां है उसका मनन करो, फिर मनन के बाद चिंतन करो, चिंतन करो, उसकी उसकी गहराई में जाओ, फिर चिंतन के बाद मंथन करो। तो मंथन करने से मक्खन निकलेगा, कई नई नई बातें निकलेंगी। जैसे दही का मंथन करते तो मक्खन निकलता है, दिखाई नहीं देता उस समय, लेकिन मक्खन निकलता है क्योंकि मंथन किया। तो मंथन करने से नई नई बातें निकलेगी, तो इतनी खुशी होगी, वो शक्ति देगी। और मंथन करके जैसे मन को इतना स्वच्छ कर दिया, तो जब स्वच्छ मन हो गया और दे की दुनिया की बातें सब भूल गई, फिर बाबा के प्यार में खो जाओ बिल्कुल अशरीरी बन करके, बाप समान में आत्मा बन गई, प्रेम के सागर में खो जाओ, भगवान का प्रेम अनुभव करो, वो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य का अनुभव करो, भगवान सत्य है, वो दाता है, शिवम है, कल्याणकारी है, सर्व गुणों का सागर इतना सुंदर है, वो आकर्षित करेगा आत्मा को। ये तीन चीजें आकर्षित करती है हर एक को, सत्यम शिवम सुंदरम जब कहते हैं ना, तो सत्य भी आकर्षित करता है, जिससे प्राप्ति होती है उस वो भी आकर्षित करता है, और सुंदर चीज तो आकर्षित करती है। कोई झूठा व्यक्ति होगा वो थोड़ी आकर्षित करता है, जो व्यक्ति सच्चा होता है वो व्यक्ति आकर्षित करता है। झूठे से तो हम दूर भागते हैं, ये तो झूठा है छोड़ो उसको, ये तो जो बोलता है ना ये झूठी है, इसका कभी उसके प्रति प्यार भी नहीं पैदा होगा झूठे व्यक्ति के प्रति। तो सत्य से प्यार है। अभी भी हम देखते हैं ना खाने के जो पदार्थ होते हैं रेडीमेड, बहुत कुछ लेते हैं होटलों में खाते हैं, क्या क्या लेते हैं, अब सब दुनिया में क्या क्या चल रहा है, लेकिन उसमें कितनी मिलावट है, और देखते हैं कि उससे और ही तबीयत बिगड़ती है। अपने घर में जो पकता है शुद्ध बनता है वो अगर खाते हैं तो हेल्दी रहते हैं, और चीजें पता नहीं क्या क्या खाते हैं दुनिया में, उसमें कितना उसमें केमिकल होता है, कितना उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो शरीर को नुकसान करते हैं, फिर कितनी दवाइयां खानी पड़ती है केवल जीभ की टेस्ट के लिए, उसकी जगह सात्विक भोजन घर में पकाया हुआ खाओ तो अंतर में शांति भी मिलेगी। दुनिया में तो डर भी रखता है, पता नहीं इसमें इस कोई ने दिया और मैंने खा लिया, उसमें जहर भी मिला हो सकता है, होता है। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को कितना सात्विक रखा है, बच्चे ऐसे वैसे किसी का खाओ नहीं, जो भी भोजन करते हो वो बाबा की याद में पकाया हुआ, बाबा को भोग लगाया हुआ फिर स्वीकार करो। दुनिया में आजकल तो ये भी डर है किसी का खाया, किसी का ऐसे खा लिया वो पता नहीं क्या होगा कैसा होगा। तो इसलिए जो बाबा ने हमें मर्यादाएं सिखाई है नियम सिखाए हैं वो सचमुच कितना जीवन के लिए उपयोगी है, हमें हल्का बनाते हैं। तो जब सत्यम भी है फिर शिवम भी है, शिवम माना कल्याणकारी है, तो बाबा तो दाता बन के देता है, देने वाला जब भी देता छप्पड़ पार के देता है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुमको लेने की तरकीब आनी चाहिए, कैसे बाबा से लेना है मांगे बिना, सब कुछ देता है बाबा, बस आप दिल से उनको मानो और अपना जो ममत्व है उसमें से निकालो, बस बाबा का समझ कर चलो, तो देखो कैसे बाबा छप्पड़ फार के देता है, कभी भी कोई कमी नहीं होगी। जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, ये विघ्न लगेंगे नहीं, इसलिए बाबा हमको रोज नई नई तरकीबें बताता है कैसे इन विघ्नों को ये या जो भी तूफान है उसको तोहफा समझो, पेपर टाइगर समझो, ये सब जो बाबा कितना कहते हैं, क्योंकि ये सब खेल है इसमें फंसो नहीं। तो देखो मन कितना शांत कितना शुद्ध हो जाएगा, और जैसे ही बाबा की याद में बैठे एकदम अशरीरी हो जाएंगे, और अशरीरी हुए तो देखो सब सहज हो जाता है, बाबा के सिवा और कुछ याद नहीं आएगा, यही है बाबा की याद में खो जाना, यही है बाबा की याद में समा जाना। तो समा जाना सहज है या मुश्किल है? जो समझते हैं समा जाना बहुत मुश्किल है हाथ उठाओ, मुश्किल है हाँ बताओ माताएं, जो समझती है बहुत मुश्किल है हाँ मेरे से नहीं होता है, वो बताओ हाथ उठाएं जो समझते मुश्किल है, कोई नहीं, भाई उठाएं हाथ जो समझते मुश्किल है, तो इसका मतलब सबके लिए सहज है, तो हाथ उठाओ सहज है तो हाँ वेरी गुड, अपने लिए ताली बजाओ, क्यों नहीं ताली बजाओ, बिल्कुल बिल्कुल सहज है। बस शिव बाबा से इतनी प्रीत हो, क्योंकि वो सत्यम शिवम और सुंदरम भी है, उनसे सुंदर तो कुछ है ही नहीं, उस बिंदु में इतना विशाल अनंत सिंधु है, क्या उनसे सुंदर कोई और चीज होगी? कुछ भी नहीं, इस दुनिया की सब चीजें बेकार है, कहीं आंख भी नहीं डूबनी चाहिए, बिल्कुल आंख नहीं डूबनी चाहिए। भगवान जैसा सुंदर तो और कोई हो ही नहीं सकता है। परंतु हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और वो हमें मिला है तो हमें और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो कहीं भी इस संसार में कहीं भी आंख नहीं डूबनी चाहिए। जो सहज मिले वो दूध बराबर, कहते हैं ना, जो किसी के घर में आप जाएंगे तो दूध थोड़ी कोई मांगेगा, आप दूध थोड़ी मांगेंगे किसी से, आप चलो पानी मांग लेंगे। इसीलिए जो सहज मिले वो दूध बराबर, वो अपने आप आपके आगे दूध लाता है, मानो अपने आप दिया, हमने नहीं मांगा। आप तो पानी मांगेंगे, भाई प्यास लगी जरा पानी देंगे। तो जो सहज मिले वो दूध बराबर, जो मांग लिया वो पानी। दूध में तो शक्ति है, क्योंकि सहज मिला वो शक्ति है, मांग लिया वो पानी है। केवल प्यास बुझाएगा उस समय। हम किसी से कुछ मांगते हैं, वो कहेगा लो भाई दे दो, नहीं मांग रहा है बार बार, दे दो। तो भले भारी मन से भी देगा क्योंकि हमने मांगा, पर वो पानी का काम करेगा, वो शक्ति नहीं देगा, क्योंकि हमने मांगा और तब उसने दिया। और जो खींच लिया, जबरदस्ती ले लिया, चोरी करके, डाका करके, खून करके, दुनिया में तो क्या नहीं होता है, वो जो खींच लिया वो रक्त बराबर, न वो हमको सुख देगा और उसको तो सुख दिया ही नहीं, क्योंकि खींच लिया उनसे, वो रक्त बराबर है। जैसे किसको गोली मारते हैं, खून निकलता है, तो वो खून किसके काम आता है? किसी के भी काम नहीं आता है। और खुद स्व इच्छा से ब्लड डोनेशन देते हैं ना, है ना, ब्लड हाथ ऐसे करते हैं, तो वो खून लेते हैं, वो काम आएगा, जरूरतमंदों को हमारा खून काम आएगा। इसलिए ब्लड डोनेशन कितना बाबा के बच्चे करते हैं, आप लोगों ने भी किया होगा, जिन्होंने अपना ब्लड डोनेशन किया, खून दान किया, वो हाथ उठाए, देखो, अरे वाह, इतनों ने किया है, बहुत अच्छा, बहनों ने भी किया, बहुत अच्छा। आजकल तो वो भी मांग, रोटरी क्लब वाले, लायंस क्लब वाले, और भी कई मेडिकल अना हॉस्पिटल्स, आँखों का भी डोनेशन करते हैं, मेरे मरने के बाद मेरी ये भले आँखें देना, किडनी देना, हाँ, क्योंकि अगर वो ब्रेन डेड है तो थोड़े समय के अंदर वो अगर अंग है वो निकाल सकते, अभी तो ब्रेन डेड है, ख़त्म, और डॉक्टर तो जवाब दे चुके हैं ब्रेन डेड है, तो फिर समझेंगे शरीर तो कोई काम का नहीं। पर पहले लिख देते हैं मेरा अंग जो शरीर है वो अस्पताल में देना, बहुत भी करते हैं ये भी, कि वो परीक्षण हो स्टूडेंट्स के लिए, माना ये भी एक दान है, अंत तक दान है। एक माँ, एक बहन बता रही थी कि मेरी लौकिक माँ जो थी उसने यही कहा था कि मुझे ना ये चेन्नई जाना है, माना मद्रास जाना है, मुझे देखना है, लेकिन वो अपने जीवन काल में नहीं देख सके, नहीं जा सके, परंतु उसने अपना ये आंखें डोनेट करने का लिख दिया था। अब उसने शरीर छोड़ दिया, तो परंतु उसने कहा मेरी आंखें डोनेट करनी है, तो वो आंखें तो डोनेट की, और फिर वो डोनेट करके उनको मिली जो वहीं का था, मतलब उसी स्थान का था, वो उसको देखना था, लेकिन वो अपने शरीर में नहीं देख सकी, लेकिन वो डोनेट किया, तो जिसको ये आंख मिली वो तो देख सका ना, तो देखो तो ये भी जैसे उसकी इच्छा पूरी हुई, क्योंकि उन्हीं आंखों से उसने देखा वो जहाँ वो जाना चाहती थी। यानी कहने का भाव है कि ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है उसमें कल्याण है, उसमें कुछ न कुछ प्राप्ति जरूर है, अरे हर चीज में। इसलिए कभी न दुखी होना है न शांत होना है, और देने की भावना अगर है तो उसका 1000 गुना मिलता है। इसीलिए बाबा ने यही सिखाया, हमारा हाथ कैसा हो, दुआएं देने वाली, देने वाली तो और ही छप्पड़ फार के मिलता है। अगर कंजूस है, कंजूस है अपने पास ही, तो कुछ भी नहीं मिलता है। हम तो बहनों को भी कहते, बाबा भी कहते, बड़ा दिल रखो, सेंटरों पर भी जाते, बड़ा दिल रखो। तो देखो बड़ा दिल रखने से बाबा कैसे अपने आप भेजता है। अब छोटा छोटा दिल होगा तो वो सेवा भी इतनी छोटी छोटी होगी, बड़ा दिल रखो तो बड़ी सेवा होगी। तो ये सेवा के लिए भी दिल बड़ा चाहिए, केवल दिमाग बड़ा नहीं। बाबा कहते और ही प्लान बनाओ, लेकिन प्लेन बुद्धि होके बनाओ, मैं मेरा इन सब से परे, तब बाबा की सेवा में भी सफलता मिलेगी, योग में भी सफलता मिलेगी, हमारी धारणा में भी सफलता मिलेगी, और ज्ञान का मनन चिंतन होता रहेगा तो खुशी की खुराक सदा खाते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करते हैं।
ओम शांति। अभी एक भाई अजय मालाकार भाई बाबा की याद के ही गीत गाएंगे। दीदी जी का बाबा का धन्यवाद का गीत है, उसी गीत में हम योग में बैठेंगे।
रथ को बड़े ही जतन से संभाला, गुण शक्तियों से है सबको सजाया, उमंगों के पंख दे फरिश्ता बनाया, मन पंछी आजाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। वरदानों का बेहद खजाना है मेरा, एहसानों का कैसे चुकाए है सिला, वरदानों का बेहद खजाना है मेरा, एहसानों का कैसे चुकाए है सिला, ये महफिल गुलशन तुम्ही से है खिला, कहे दिल का चलता चले सिलसिला, मन पंछी आजाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा, हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा, हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा, ओ प्यार लुटाने वाले जीवन बनाने वाले, ओ प्यार लुटाने वाले जीवन बनाने वाले, शुक्रिया बारंबार है ओ मेरे बाबा, हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। ओम शांति।
सुंदर अजय भाई जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। कारशंग से आए हैं, नॉर्थ बंगाल। और अभी हमारे एक जसपाल भाई जी हैं धनबाद से, वो भी बाबा का गीत गाना चाहते हैं बिना ट्रैक के, तो थोड़ा हम उनको भी सुनेंगे। आप लोग बैठे रहे। आदरणीय शिलू दीदी जी को हम एक हाथ की ताली से बहुत बहुत दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करते हैं। आप हम सब के बीच बहुत सुंदर अनुभवों युक्त पॉइंट्स द्वारा हमें मार्गदर्शन दिए। अभी एक गीत सुनकर हम सब उठेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। आज का टॉपिक जो था ना, बाबा को याद करना है। याद अगर दिल से करेंगे तो सब कुछ बिना मांगे ही मिल जाता है, उसी पर गीत है ये वाला। बाबा की याद सबको आ रही है? जवाब दीजिए, याद आ रही बाबा की? तो बस बाबा की याद में सब गाएंगे गीत। आपकी याद बाबा, आपकी याद बाबा रह रह के आए, आपकी याद बाबा रह रह के आए, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा, ओ बाबा आपने कैसा जादू फेरा है, जिसको देखो वो ही कहता बाबा तो मेरा है। ओ बाबा आपने कैसा जादू फेरा है, जिसको देखो वो ही कहता बाबा तो मेरा है। याद ना आए क्यों जिनसे प्राण पाए, याद ना आए क्यों जिनसे प्राण पाए, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा, पहले भी पालना दी आपने कमाल की, अव्यक्त होके सेवा और भी विशाल की, सोच के ऐसी सेवा आंख भर आए, सोच के ऐसी सेवा आंख भर आए, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा, अंतिम लाइन में देखिए बाबा क्या समझा रहे हैं। सुनते हैं ध्यान से आपका ये कहना, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी रहे ना। सुनते हैं ध्यान से आपका ये कहना, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी रहे ना। आप जो भी कहते बाबा, आप जो भी कहते बाबा करके दिखाए, आप जो भी कहते बाबा करके दिखाए, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा रह रह के आए, आपकी याद बाबा रह रह के आए, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू।